ओम शांति। तो आज हमारे इस सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी निर्मला दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1936 में ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना हुई हैदराबाद सिंध में, और इधर 1935 में एक साल पहले मुंबई महानगरी में डॉक्टर निर्मला दीदी का लौकिक जन्म हुआ। और बचपन से ही आपको था दीन दुखियों की सेवा करने का, इसलिए आपने मेडिकल की स्टडीज की। और मेडिकल स्टडीज जब पूरी ही होने वाली थी तब 1962 में मुंबई में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। मम्मा बाबा उन दिनों मुंबई जाया करते थे, तो वहीं पर आपकी भेंट हुई मम्मा बाबा से, आपने उनकी पालना भी ली। फिर तो बाबा के गाइडेंस से आपने 65 में क्लिनिक भी खोला और 66 में सेवा केंद्र भी खोला, जो आपको आपके पिता ने दहेज के रूप में दिया। और फिर आप सेवाएं करती रही, मेडिकल भी और मेडिटेशन की भी, दोनों सेवाएं चलती रही। और बाबा ने आपके लिए एक लॉटरी प्रस्तुत की विदेश सेवा की। 1971 में आपको विदेश भेजा, जो हमारा पहला ग्रुप गया था विदेश सेवा के लिए, उसमें आपका नाम था। बाकी सब तो विदेश सेवा कुछ कुछ दिन करके वापस आ गए, लेकिन दीदी का पार्ट विदेश सेवा का लंबा रहा। 71 से लेके 78 तक आप विदेश के अलग अलग स्थानों पर सेवाएं देते रहे। और इस 78 के बीच में 75 में आप ऑस्ट्रेलिया भी जाकर आए, यूके, लंदन, मॉरिशस, अफ्रीका आदि आदि स्थानों पर गए थे। तो 78 में फिर आपने डिसाइड किया कि विदेश सेवाओं का बेस ऑस्ट्रेलिया रहेगा। तो पिछले 30 वर्षों से लगातार ऑस्ट्रेलिया में रहकर आपने वहां की बहुत सेवा की, विशेष करके एशिया पैसिफिक रीजन, जिसके अंदर करीब 17-18 देशों में आपने सेवा केंद्र खोले। और फिर तो मतलब वहां के आप डायरेक्टर हैं एशिया पैसिफिक रीजन के। और फिर 2009 में बाबा ने आपके कंधों पर और एक जिम्मेवारी रखी, आप ज्ञान सरोवर एकेडमी के भी डायरेक्टर बने। और अभी वर्तमान में जब दादियां अव्यक्त होती चली जा रही हैं, तो यज्ञ ने आपके कंधों पर और एक जिम्मेवारी रखी, आप जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। साथ साथ हमारा जो आईटी विंग है उसके आप चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी गुप्त जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं जो आप बखूबी निभा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके आध्यात्मिक पालना देने में कोई कमी नहीं है। बहुत ही निर्मल, बहुत ही शांत चित्त, लेकिन नियमों में बिल्कुल पक्के, ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का कहीं भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी जो हमें रोज हम फोन में सुनते हैं नियम, उस नियम का भी आप बखूबी पालन करते और हमें भी याद दिलाते हैं। बहुत ही मितभाषी हैं बाबा, आपको बहुत प्यार से आपकी सच्चाई और सफाई को देखकर निर्मल आश्रम कहा करते थे। तो ऐसी निर्मलता की मूरत, पावनता की मूरत, जिनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक पावन वाइब्रेशन फैल जाते हैं, ऐसे पावन फरिश्ते से आज हम सुनेंगे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की स्थिति हम कैसे बनाए, आदरणीय दीदी जी। और फिर दीदी जी 7:30 तक हमें योग भी कराएंगे।
ओम शांति। अभी गीत सुना, बाबा ही मेरा संसार है। तो बुद्धि में ये है, बाबा ही मेरा संसार है या हमारे संसार में है पति पत्नी बच्चे माँ बाप सब है। सब है ना? तो सबके साथ रहते अलौकिक संबंध बांधना है भी। तो न्यारा और प्यारा होकर रहना है उनके साथ। जिम्मेवारी भी निभानी है ट्रस्टी बनकर, अपने को निमित्त समझकर चलना है। तब बाबा संसार बनेगा। जितना बाबा से हम गहरा संबंध बांधेंगे, बाबा से हर प्रकार का सपोर्ट लेंगे, तो क्या होगा, दुनियावी संबंधियों से सपोर्ट नहीं लेना पड़ेगा। नहीं तो हमको क्या आदत है, दुनियावी संबंधों को सपोर्ट लेना और देना। बच्चे हैं ना, कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप समझेंगे ये बच्चे हैं और उनका सारा निर्णय लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ शादी करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। और मेरा मन छूटता नहीं है, मेरा मन छूट जाए तब क्या होगा, जब मेरा मन छूट जाएगा तो बाबा क्या हो जाएगा। तो बाबा से सर्व संबंध जोड़ने, उसमें भी खास जिसमें भी मोह है ना, वो संबंध बाबा से जोड़ना है। क्योंकि जहां मोह है वहां दुख है। जरा भी अलग हो जाता है दुख होता है। देखो, माँ बाप बच्चों को विदेश भेजते हैं और विदेश भेज कर क्या करते हैं, एयरपोर्ट पर देखो, विदेश बच्चों को छुट्टी देने आते हैं तो माँ बाप का क्या हाल होता है, रोते रहते हैं, भाई साहब आप थोड़ा इस तरफ बैठो, दोनों भाई के बीच में जगह रखो, ऐसे करो, पर्स बीच में रखो। और हमारे पास एक माता थी, कहती थी मेरा बच्चा अमेरिका गया, अमेरिका में उसको कौन जलेबी खिलाएगा, उसको जलेबी बहुत अच्छी लगती थी, अभी मैं जलेबी नहीं खा सकती हूँ क्योंकि बच्चे को नहीं मिलती है। और कई बार आपने देखा होगा, छोटा बच्चा है या बड़ा भी बच्चा है, बेहोश है, वो बेचारे को दुख भी नहीं होता, मालूम भी नहीं है क्या हुआ है। माँ बाप मित्र संबंधी कितने परेशान होते, इधर गए उधर गए, इस डॉक्टर के मिले उसको डॉक्टर में को मिले, डॉक्टर जो भी हो जाए, कितना खर्च हो जाए, इंजेक्शन लगाओ, फॉरेन से इंजेक्शन मंगाओ। तो ये है मोह की निशानी, दुखी होंगे। और मर गया तो बात ही नहीं पूछो, कितना समय रोते रहेंगे। एक साल तो जरूर शोक मनाते हैं, रोते भी रहते हैं। मॉरिशस में हमारे पास एक माता थी, उसका पति को मर गए 11 साल हो गया था, पर कपड़े उसने रख दिए थे कबट में उसके, तो जब भी कबट खोलती थी रोती थी। इसलिए यूजुअली तो हमारी रिवाज है कि मरने वाला का सब कुछ खटिया सहित सब दान दो दो, ताकि न देखो न दुखी हो। परंतु कई छोड़ नहीं सकते हैं तो रोते रहते हैं। तो बाबा की पहली शिक्षा है, दे को बोलो, दे के संबंधियों को भूलो, पुरानी दुनिया को भूलो, किसी में भी मोह ना हो। भूलो माना मोह ना हो, ना अपने शरीर में, ना लौकिक में, ना अलौकिक में। कई बार क्या होता है, लौकिक से तो मोह टूट जाता है, फिर अलौकिक में जुट जाता है। अपनी टीचर में मोह पड़ जाता है, या अपने स्टूडेंट में मोह पड़ जाता है। टीचर्स का अपने मकान में मोह पड़ जाता है कि मैंने इतना अच्छा मकान बनवाया, सजाया, अब दादी कहती है उस सेंटर पर जाओ, तो सेंटर में मोह पड़ जाता है। अपने मकान में मोह हो जाता है, अपने साधनों में मोह हो जाता है, डायरी में मोह हो जाता है। डायरी गुम हो जाती है तो कितना दुख होता है, हमने इतनी सारी नोट्स लिखी थी, डायरी गुम हो गई। तो इसलिए ये देखना है, अपनेपन का त्याग करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का हो। सब कुछ बाबा का है, घर में भी रहो ट्रस्टी होकर, लौकिक को अलौकिक बनाओ, ये बाबा के बच्चे हैं, मेरे नहीं। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बोलना तो बहुत सहज है, बाबा सब कुछ तेरा कहेंगे, बाबा सब कुछ तेरा, तेरा सो मेरा, मेरे को हाथ मत लगाओ बाबा। तो ये न हो। तो जितना जिम्मेवारी बाबा को दे देंगे ना, आप हल्के रहेंगे और उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। वो नरसिंह मेहता का आपको मालूम होगा, हूँ करूँ ये जग्ञानता, सकट नो भार जेम स्वानताने। ऐसी हम लोगों की स्थिति है, गृहस्थी है ना, मैं घर चलाता हूँ ना, मैं बच्चों को संभालता हूँ ना, तो मैं करता हूँ तो भारी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं और मेरा, उसका त्याग करना है। बड़ा त्याग ये है मेरा। अभी हमको मालूम है अंतिम पेपर ये होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। दुनिया में क्या है, एग्जाम की डेट फिक्स होती है, पेपर नहीं मालूम। यहां हमको पेपर मालूम है, डेट नहीं मालूम कि कब हमारी एग्जाम होंगे। वैसे तो छोटी मोटी एग्जाम पल पल होती ही रहती है ना, ज्ञान में आने के बाद कितनी एग्जाम पास करनी पड़ती है, कितना सामना करना पड़ता है। परंतु ये शरीर कब छूटेगा वो मालूम नहीं। हम कहेंगे भले एवरेज इंडिया में सबकी आयु है 65, पर क्या मालूम आजकल तो क्या है, छोटे बच्चे भी मर जाते हैं, कैंसर हो जाता है किसी को, ब्लड का कैंसर बच्चों को भी होता है, और कोरोना काल में कितने मर गए छोटी छोटी आयु के, सेंटर पर रहने वाले टीचर्स कितनों ने शरीर छोड़ा, समर्पित भाई बहनों ने शरीर छोड़ा, और अचानक तो ये देखना है कि अंत समय और कुछ याद नहीं आए। लौकिक को क्या होता है अंत समय, क्या कहेंगे, बच्चे को बुलाओ, पोते को बुलाओ, पोते को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, सबको, मुझे इसको ये देना है, उसको वो देना, उसको वो देना, उसको वो देना। तो अंत में कौन याद आता है, संबंधी और अपना, स्पेशली धन दौलत जेवर जो भी है, ये जेवर इसको देना, ये चांदी का इसको देना, ये उसको देना। तो ब्राह्मणों को देखना है अंत में एक बाप की याद रहे, वो कब रहेंगी, जब टोटल नष्ट मोह होगा। और बहुत समय की प्रैक्टिस होंगे एकाग्रता के, क्योंकि बाबा ने तो प्रैक्टिस कराई है कि देखो अपने मन को एक सेकंड में साकारी से आकारी से निराकारी ऑर्डर करो और देखो मन जाता है या नहीं, कभी से ये प्रैक्टिस कराइए। और आप तो खास भट्टी में आए हो तो आपने तो चेक किया होगा और चेक करते रहेंगे कि यहां बैठते ही मन बाबा में जाता है या और कुछ आप याद आता है। तो जितना आप देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पहला लेसन यही है, अपने को आत्मा समझो। परंतु ये पक्का हो गया है कि घड़ी घड़ी देहभान आ जाता है, दिन में कितनी बार ये आईने में चेहरा देखते हैं, बाल ठीक है, कपड़े ठीक है, आदि आदि, देहभान ना, देखो देखा ना। तो इसलिए ये देखना है सदा देही अभिमानी रहें। कर्म करते करते बाबा की याद रहती है। माताएं जब खाना पकाती हो तो क्या याद आता है? घर वालों को कितना नमक चाहिए, कितनी मिर्ची चाहिए, लड़के को क्या अच्छा लगता है, पति को क्या अच्छा लगता है, मनाने समय ये नहीं याद रहता है कि ये मैं ब्रह्मा भोजन शिव बाबा के लिए बनाती हूँ। क्या याद रहता है? घर वालों के लिए खाना बनाना है तो घर वाले याद आते हैं ना। तो ये देखना है कि कर्म करते करते बाबा की याद रहे। और विशेष खाना पकाने के लिए चाहे घर में भी रहते हो, बुद्धि में रहे ये ब्रह्मा भोजन है, शिव बाबा को ऑफर करना है। जानकी दादी क्या कहती थी, विदेश में भी कहती थी, मधुबन जैसा भोग बनाओ। मधुबन में ओवन में कुछ नहीं बनता, विदेश में ओवन में कई चीज बनती है। तो कहती है नहीं, मधुबन जैसा, जो जैसे हलवा बनाते हैं, कितना सीख के बनाते हैं बाबा की याद में। विदेश में तो क्या करेंगे, ज्यादा केक बनाया, बिस्किट बनाया ओवन में, नहीं मधुबन जैसा बनाओ, स्पेशल भोग कि बाबा की याद में बनाए। तो एक तो हमें ये देखना है कि हमारा अमृत वेला पावरफुल हो। क्योंकि अमृत वेला पावरफुल होगा ना, सारा दिन अच्छा रहेगा। दूसरा, अंतर्मुखी रहकर, यहां भी आए हो, अंतर्मुखी होके चेक करना कि हमारे में कौन सी शक्ति की या गुण की कमी है, कौन सा विकार है। विशेष हमारा मोह किस में है, शुरू शुरू में बाबा ने जब योग कराते थे ना, तो मोह के लिए बाबा कहते थे चेक करो, कल्पना करो कि वो आपका ये मर गया है, सामने सब खड़ा बैठा है, क्या हाल है, ये अपना चेक करने का। मोह होगा तो दुख होगा। तो अंतर्मुखी होकर चेक करना एक नामी होके रहना है, एक बाबा याद हो उसका ही नाम अपने मुख पर आवे। क्योंकि क्या होगा, जिसके मोह में फंसे हुए होंगे ना, या जिसके नाम रूप में फंसे होंगे, तो सारा दिन उसका नाम लेते रहेंगे ना, मेरा पति ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, ये ऐसे करता है, वैसे करता है, उसको ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, तो सारा दिन उसका नाम आता है। तो ये देखना है भल उससे प्यार हो, बीमार है, सेवा करो, उनके टाइम पर खिलाओ पिलाओ सब कुछ। परंतु मेरा पन्ना हूं, जैसे देखो पड़ोसी का बच्चा बीमार होता है हम परेशान होते हैं क्या? जाके विजिट करके आएंगे, पूछ के आएंगे क्या है कैसा है, कदाचित राय भी देंगे, भाई फलाना डॉक्टर अच्छा है उसके पास ले जाओ, या हमने फलानी दवाई अजमाई थी। पहले तो घरगथ्थू दवाई करते हैं ना, पीछे डॉक्टर के पास जाते हैं, चलो राय सलाह दो, परंतु परेशान नहीं होते। पर मेरा बच्चा बीमार है तो कितना परेशान हो जाते हैं। और तपस्या के लिए इकोनॉमी करना है अभी, क्योंकि हमको हमारे पास अभी अविनाशी खजाने हैं ना, तो अविनाशी खजानों को संभल के उसका उपयोग करना है। संकल्प, समय, शक्ति, कर्म, वाणी, किसी को बाबा कहते हैं हमेशा एक घंटे में कोर्स कराओ, एक दिन का कोर्स एक घंटे में। पर कईयों को बहुत बोलने की आदत होती है, हाँ डेढ़ दो घंटा निकाल देते हैं, तो ये क्या हुआ, अपना भी समय वेस्ट हुआ, सामने वाले का भी। हम शुरू में तो कोर्स कराते थे ना, कहते थे 7 दिन सुन लो, पीछे प्रश्न करना, और कईयों को शौक होगा तो पहले ही दिन सब कुछ बता देंगे और प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो शब्दों का भी इकोनॉमी, समय का भी इकोनॉमी, क्योंकि देखो खाना बनाने में कोई तो बहुत टाइम लगा देता है ना, को भून भून के तल तल के इतना अच्छा बनाते हैं, और विदेश में तो क्या करते हैं, आधे घंटे में खाना तैयार। सहज, क्योंकि नौकरी भी होती है, सब कुछ करना होता है, खाना पकाना, सफाई करनी, काम पर जाना आना, फिर स्नान करना, फिर स्टूडेंट को अटेंड करना, तो खाना पकाते रहे तो काम से नहीं चले। और वहां तो एक ही बार बनाते हैं, दो बार खाते हैं, और कभी 3 बार भी खाते हैं, क्योंकि नौकरी पर जाना होता है। तो खास वेस्ट में तो क्या करते हैं, सवेरे सैंडविच खा ली या सीरियल खा लिया, दोपहर में सैंडविच या एप्पल या गाजर या ऐसे कुछ खा लेंगे, और शाम को पकाएंगे। और जिनको कोई एशिया में क्या करेंगे, सवेरे पका लेंगे, फिर वही ब्रेकफास्ट, वही लंच, वही डिनर। तो ऐसे तो नहीं करेंगे हम, हमारे पास तो 3 टाइम खाना पड़ता है, मधुबन में भी 3 टाइम खाना पड़ता है, परंतु ये देखना है कि टेस्ट के लिए नहीं, परंतु हेल्थ के लिए क्या खाना अच्छा है, कैसा खाना अच्छा है, उस पर ध्यान रखना है। और क्या है कि एक विकार को छुट्टी दे देंगे ना तो दूसरे विकार आ जाएंगे, लोभ को छुट्टी दे देंगे। लोभ हम लोगों के लिए तो क्या है, टूली, और कहेंगे भेलपुरी बहुत दिन से नहीं खाई है, इडली डोसा नहीं खाया है, पकौड़ा नहीं बनाया है। तो कई बार क्या है कि टेस्ट के कारण कुछ न कुछ खाना पकाना ये दिल होती है, और अच्छा खाना पकाया तो ज्यादा खा लेते हैं। तो लोभ को छुट्टी दे देंगे तो फिर धीरे धीरे दूसरे विकार भी आ जाएंगे। इसमें भी खास मालूम है, देह अभिमान है सबकी जड़, उसको छुट्टी दे दी सब विकार आ जाएंगे। इसलिए बाबा हमको क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा योगी बनने के लिए पवित्रता जरूरी है। जितना पवित्र रहेंगे योग ज्यादा, और जितना योग ज्यादा होगा निर्विकारी रहेंगे। और योग के लिए हमको वैराग्य चाहिए, पुरानी दुनिया से वैराग्य। क्या है कि पुरानी दुनिया में, क्योंकि गृहस्थ में रहते हैं मेजोरिटी आप लोग, तो क्या होगा, व्यवहार में जाना पड़ता है, कलर कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो क्या होता है, नजर जाएंगी, शोकेश में क्या है, कौन सा कलर का ड्रेस है, कौन सी कलर की फैशन है, और कौन सी डिजाइन। तो फिर नेचुरली है कि बुद्धि भी जाएंगी, कहेंगे ये तो अच्छा है, खरीदना है, और किसी फ्रेंड्स को पहना हुआ देखेंगे तो पूछेंगे कितने का लिया, कहाँ से लिया, और फिर उसके लिए पैसे की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो समय भी गया, धन भी खर्च करेंगे, और कईयों के शौक होता है जेब में पैसा है जो भी अच्छी चीज लगी खरीद लिया, तो स्टॉक बढ़ता जाता है घर में। तो ये देखना है कि ये हमारा वैराग्य नहीं है, इंटरेस्ट है ना किसी में, चाहे मकान, कि हमारे भाई का तो मकान इतना अच्छा है, हमारा तो उसे भी अच्छा होना चाहिए। आजकल तो सेंटर वाले भी मुश्किल 20 स्टूडेंट आते हैं और हॉल बनवाते हैं 200 का, तो ये है कि सेंटर को भी सिंगारने का शौक होता है हम, और कंपटीशन इसके सेंटर में ये है, मेरे सेंटर में भी ये होना चाहिए आदि आदि। तो इसलिए हमको देखना है कि मालूम है कि हमको समय शक्ति धन बचाना है, तो इसलिए। और कल जाके हमको क्या मिलने वाला है ये भी बुद्धि में है। आज हमको, हम वनवास में हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, कल हमको लक्ष्मी नारायण को देखो कितने प्रकार के ड्रेस है, रोज ड्रेस नया, इतने अलंकार, विमान दरवाजे पर खड़ा है। तो कल सब कुछ होगा, आज की मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू कुछ नहीं उसकी भेंट में। साधन है, यूज करो, परंतु इससे अच्छा हो, क्योंकि रोज नई नई फैशन आती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी होती रहती है। तो हमारे पास मोबाइल फोन भी हो, 4G हो, 5G हो, टेलीविजन हो, कलर टेलीविजन, बड़ा स्क्रीन हो, आदि आदि शौक, इच्छा, आकर्षण भी न हो। जब वैराग्य है त्याग सहज हो जाएगा, और सबसे बड़ा त्याग क्या होता है हमारे ज्ञान में आने के बाद, नींद का त्याग, अमृत वेले उठना। बाहर का खाना क्या है, इंडिया में एक तकलीफ ये है कि मित्र संबंधी स्पेशली माँ बाप के पास जाते हैं, भाई भाभी के पास जाते हैं, तो कहेंगे हमारे हाथ का नहीं खाएंगे, हम कोई अच्छे होता है क्या। तो कभी कभी हिम्मत नहीं होती है सामना करने की या समझाने की, तो खा लेना पड़ता है। विदेश में लोगों को चॉकलेट, आइसक्रीम, केक का शौक होता है, तो खा लेते हैं, ब्रेड भी बाहर के ले लेते हैं। कोई कोई तो है जरूर जो घर में बनाते हैं, और आजकल तो ब्रेड का मशीन भी आ जाता है, बस साधन डाल दो आप ही बन जाता है ठीक। तो ये देखना है खान पान के शुद्धि रखने का, सतो प्रधान खाना, और बाबा की याद में पकाया हुआ खाना। इंडिया में मैं समझती हूँ एक सुख है कि घर वाले फोर्स नहीं करते ना, करते हैं नॉनवेज बनाने का, विदेश में घर वाले फोर्स करेंगे, घर में नौकरानी भी होंगे खाना पकाने वाली, तो भी कहेंगे नहीं तुमको ही पकाना। तो कई विदेशियों ने तो क्या किया, अपनी नौकरानी को भी ज्ञान दे दिया ताकि वो कुछ आधा तो काम कर देंगे, खाना पकाने में मदद करेंगे। संग दोष का भी ध्यान रखना है। मुरली तो रोज पढ़नी है, सुननी है, मनन चिंतन करना ही है, क्योंकि योग में ये भी मदद करती है ना, मुरली मंथन। शुरू शुरू में तो नहीं कहते हैं मुरली रिवाइज करो, ज्ञान का मनन मंथन करो, फिर धीरे धीरे कहेंगे फरिश्ता बनो, सूक्ष्म वतन में जाओ, फिर लास्ट स्टेज है बिंदु बनकर बिंदु को याद करो। तो ये जो पांच फॉर्म की एक्सरसाइज है वो भी जितनी करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, मन बिजी हो जाएगा तो मन में व्यर्थ संकल्प चलेंगे। नहीं तो क्या है, प्रदर्शन करने की आदत है, किसने क्या पहना है, किसने कैसे बाल बनाए हैं, किसकी चप्पल कैसी है, किसकी पर्स कैसी है, आदि आदि बाहर मुखी होते हैं ना, तो ये देखते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि हम बाह्य मुखी ना रहें, अपने मन को बिजी रखें। तो जितनी तपस्या होंगी सेवा भी सफल होंगी और पवित्रता के भी धारणा होंगे, तो उससे हमारा पद भी ऊंचा होगा। क्योंकि लक्ष्य तो सभी का क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना, राम सीता बनने का कोई नहीं कहते हैं ना। जब भी क्लास में बाबा हाथ उठवाते हैं ना, सब कहेंगे हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, और पुरुषार्थ में हम तो नए हैं ना, हम तो गृहस्थी है ना, और कभी कभी फिर कंपेयर करेंगे, देखो फलाना 20 साल से है अभी गुस्सा नहीं जीता, और हम तो अभी 5 साल से है, 1 साल से है। तो 1 साल वाला भी तो कहेगा ना मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, तो पुरुषार्थ इतना खराब करना पड़े ना। तो लक्ष्य कभी भूलना नहीं है कि हम क्यों पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ाता है, क्या बनने वाले हैं, तो खुशी भी रहेंगी नशा भी रहेगा। बाबा कहते हैं साक्षी बन कर रहो, परमत परदर्शन पर चिंतन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। ड्रामा में हर एक एक्टर भिन्न भिन्न है, वो अपना भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, इसलिए व्यर्थ क्या होता है, क्वेश्चन मन में, ये क्यों करता है ऐसा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो हम क्या हो जाते हैं? जज बन जाते हैं। प्रदर्शन करके तो ये देखना है, जो जैसा है, जिसको जो अच्छा लगता है करता है, और जो करेगा सो पाएगा। तो इसलिए हमें अपने पर अटेंशन देना है। बाबा कहते हैं ना, अपना टीचर बन अपने आप को चेक करना है। कि मेरे में क्या कमी है, कौन सा गुण नहीं है, कौन सा विकार है। तो वो विकार को जीतने लिए ऑपोजिट शक्ति लेनी है। यदि अहम है तो नम्रता धारण करनी। कि विशेषता मुझे बाबा ने दी है ना गिफ्ट, उसमें मुझे क्यों अहम करना चाहिए। कई बार ज्ञान के पहले भी कोई कोई विशेष होते हैं, परंतु जैसे बाबा कहते हैं ना, सोने में सुगंध भर देते हैं बाबा। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास कई आर्टिस्ट थे, गीत गाने वाला, ड्रम बजाने वाला, एक्टर्स, वो अपना अनुभव बताते हैं। ज्ञान के पहले भी वो करते थे, पर ज्ञान के बाद अभी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। नहीं तो पहला दिन शो होता है तो सारे रिपोर्टर आकर उसका रिपोर्ट देते हैं, तो नर्वस हो जाते थे, अभी नहीं नर्वस होता थे। और एक्टर भी नर्वस हो जाते हैं, उन्हों को भी वो उत्साह में ला लेते थे। तो नम्रता धारण करनी है। यदि काम विकार है तो शुद्ध प्यार, रूहानी प्यार, भाई भाई की दृष्टि, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं। यदि लोभ है, अविनाशी खजाना देखो बाबा ने कितना दिया, ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, तो वो खजाना देखकर संतुष्ट रहो। कि दुनिया वाले कितना भी धन है परंतु दुखी है, और हम बेफिक्र बादशाह है, कोई फिक्र नहीं। दादी हमेशा कहती थी, सफेद कपड़े, जेब खाली हमारा। दादी कभी पर्स हाथ में नहीं उठाती थी, उसकी ब्राह्मणी को तो उठाना पड़ता था, खुद नहीं उठाते थे। और हम लोग भी क्लास में कोई भी पर्स लाता था, क्यों लाते हैं पर्स क्लास में, दादी को पसंद नहीं आता था, जान के दादी को। तो संतुष्ट रहना है, लोभ ना हो, मोह के बजाय अभी शुद्ध प्यार, न्यारा और प्यारा। आलस्य छोड़ के उमंग उत्साह में रहना है। आलसी होंगे तो क्या होंगे, अपना भाग्य गंवाएंगे, आराम से बैठे रहेंगे, फलाना कर लेंगे ना। उसकी ड्यूटी है ना, अच्छा वो नहीं करती, मैं करूंगी तो मेरा भाग्य बनेगा। और अलबेलापन ना हो, क्योंकि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं गंवानी है, विश को बेस्ट करना है, विश का वेट ना हो। बाबा कहते हैं विश का वेट ना हो, मोटी बुद्धि ना हो, सूक्ष्म बुद्धि हो। जैसे वेट बढ़ जाता है तो क्या होता है, फास्ट नहीं जा सकते, मोटी बुद्धि वाले भी तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकते, सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए। ईर्ष्या के बदले समान में रहो, या समान में रहेंगे ना तो उनको अप्रिशिएट करेंगे, चलो कोई में कोई विशेषता है। तो जैसे माँ बाप है पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो क्या करेंगे माँ बाप, ईर्ष्या थोड़ी करेंगे, नशा रहेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर है, मेरा बच्चा इंजीनियर है, खुद भल मजदूर होंगे, पर नशा रहता है। इसी रीत से हमारे भाई बहन है, उसमें विशेषता है, हमें खुश होना है। और घृणा वैर ना हो, सब हमारे मित्र। एक हमारा दुश्मन सिर्फ रावण, सबसे प्यार और मैत्री। अब कहते हैं निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा हो। गाली देने वाले को गले लगाओ, उससे दुश्मनी नहीं करो। बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। ये जो सब स्लोगन है वो जीवन में धारण करने हैं और कुछ नहीं। बाबा ने सब युक्तियां दे दी है, अभी उस पर चलना। तो भट्टी में आए हो, पूरा लाभ लेके जाना, ताकि जब घर पहुंचो तो सब कहे वाह ये तो फरिश्ता बन के आया है। तो खास फाइनल पेपर में पास होना है, नष्टो मोहा बनकर एक बाप की याद में अंत में शरीर छोड़े, ये ध्यान रहे। शुरू शुरू में जो ऑस्ट्रेलिया में भाई बहने ज्ञान में आए ना, खास कार ड्राइविंग करते करते बहुत याद में रहते थे, तो पता नहीं कभी भी एक्सीडेंट हो गया, शरीर छूट गया, बाबा की याद होनी चाहिए। और जेब में हमेशा डायरी रखते थे, घंटे घंटे योग का चार्ट देखते थे। और पुणे में भी एक हमारी माता जी थी, अपने बेडरूम में जो कबट था उस पर चार्ट रखा था, गुणों की लिस्ट, विकारों की लिस्ट, चेक करती रहती थी कि आज कोई भी विकार के वश तो नहीं हुई, कितने गुण धारण किए, कितने विकारों पर विजय प्राप्त की है, कितना परसेंटेज अभी बाकी रहा। तो अपना चार्ट देखना बहुत जरूरी है, विशेष तपस्या में आए हैं, चार्ट देखना। सारा दिन बाबा की याद रहती है या घर वाले याद आते हैं। या इधर उधर देखते हैं, इधर उधर की बातें चलती है, तो ये विशेष तीन चार दिन जो आए हैं पूरा लाभ लेना और अपने को पूरा बदल करके जाना है, ये लक्ष्य अपना रखना। ओम शांति। अभी हम आधा घंटा बाबा की याद में बैठेंगे। यहाँ कोई दो जने को बिठाना।
इसमें तू ही तो बसता।